हरे कृष्ण। तो आज हरिवासर है, झूलन यात्रा का प्रारंभ है और श्री बलराम जन्म के शुभ आविर्भाव के उपलक्ष्य में बलराम जी के चरित्र लीलाओं के चर्चा का शुभारंभ है और एकादशी के परंपरा के हिसाब से आप लोग को प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे थे। प्रभुपाद आचार्य हैं, बलराम भी आचार्य हैं, तो इसलिए आदि गुरु का लीला पढ़ने की बात है कि गुरु गुरु परंपरा से होते हैं। तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, राम राम महाबाहो, कृष्णा दुष्ट निवर्हण, इतो विदूरे समहदनं ताडाली संकुलं, राम राम महाबाहो, कृष्ण दुष्ट निवर्हण, इत अविदुरे सुमहत् मनम ताड़ाड़ी संकुलम। अनुवाद। ग्वाल वालों ने कहा, हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दृष्ण के संहर्ता, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही विशाल जंगल है जो ताड़ वृक्ष की पत्तों से परिपूर्ण है। तात्पर्य, बरहा पुराण में कहा गया है, अस्ति गोवर्धनम नामम क्षेत्र परम दुर्लभम, मथुरा पश्चिमे भागे अधुरा दुजन द्वयम। मथुरा के पश्चिम दो जुजन 16 मील की दूरी पर गोवर्धन नामक एक पवित्र स्थान है जिसे प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। बरहा पुराण में यह भी कहा गया है, अस्ति ताड़वलं नाम धेनुका सुर संग्रखितम, मथुरा पश्चिम भागे अधुरात एक योजनम। मथुरा से पश्चिम दिशा में निकट ही एक योजन 8 मील की दूरी पर तालवन नामक जंगल है जिसकी रखवाली भयंकर धेनुका सुर कर रहा था। अतः ऐसा प्रतीत होता था कि तालवन मथुरा तथा गोवर्धन के बीचों बीच स्थित है। हरिवंश पुराण में तालवन का वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है, सतु देश समस्निग्ध सुमहान कृष्ण मृत्ति कह दर्भ प्राय स्थूलीभूतो लोष्ट्र पाषाण वर्जित। यहाँ की भूमि समतल एवं अत्यंत विस्तीर्ण है, इसकी मिट्टी काली है, दर्भ दुर्ब घास की ढंकी हुई है और कंकण पत्थर से रहित है। इस प्रकार सारे ग्वाल वालों ने राम सहित कृष्ण, राम कृष्ण बलराम और कृष्ण गोचारण लीला में सखाओं के साथ समस्त गायों को आगे करके गायों के पीछे मधुर मुरलीधारी श्याम सुंदर और उनके पीछे बलराम एवं समस्त सखावगण इस प्रकार के गोचारण लीला में जब जाते हैं, जाकर के जंगल में प्रवेश करते करते खेलते खेलते गायों के पीछे पीछे कहाँ गाय ले जाते हैं उनको क्या पता, गाय तो आगे चलते हैं, देवी मार्गदर्शक है, वो थोड़ी गाय चराते हैं, गाय उनको चराते हैं तो ले जाते हैं। आप उस दिन गोवर्धन से तलहटी पश्चिम दिशा पर वो बहुत दूर चले गए, पावस की शुरुआत था, नहीं आवाज आ रहे, उनको पकड़ो। तो दूर चले गए, तो ऐसी घटना हुआ, ऐसे वर्णन प्राप्त होता है कि नारद जी ने आंख देखा हाल बताते हैं कि एक बार बलिराजक पुत्र साहसिक, उन्होंने अपने गांव से सुतल लोक से इस पृथ्वी लोक पर आ गया। अब आकर के राजकुमार था, बड़े होनहार था, आकर के गंधमार्दन पर्वत में हिल स्टेशन में घूमने गया, तो गर्मी लग रहा था उसको, और पता नहीं फोन करके मैसेज किया होगा, उनके गर्लफ्रेंड भी आ गई तिलोत्तमा, स्वर्ग से वो आई, वो नीचे से आई ऊपर से आई, मैसेज किया होगा उनके पास, परिचित पहले था उनका, क्लासमेट थे, अब वह मिल गए गंधमार्दन की तलहटी पर। अरे जब बड़े दिन के बाद एकांत में मिलते हैं तो हास परिहास प्रणय वार्ता खिलखिल करके ऐसे हंस रहे थे, और असुर तो जोर से अट्टहास करने में उनका बड़ा अभ्यास होता है, वो छोटे मोटे हंसी नहीं कर सकते, वो हंसेंगे तो साउंड स्पीकर फेल, ऐसे हंसते हैं। और उनको क्या पता था कि दुर्वासा जी बैठे थे अपने ध्यान में, उनको पता नहीं था। वो तो आपस में अपने परिणय में लग गए थे, दुर्वासा जी का ध्यान बाधा पड़ा, वो उठ करके खड़े बोले, अरे मूर्खो और कोई जगह ना आकर के मेरे ही पास में आके तंग करते रहते, इतने गधा की तरह इतने उच्च स्वर में आवाज कर रहा है, तुम गधा बन जा। दुर्वासा जी को तो साप देना, गुस्सा करना उनका तो आप सब जानते ही हैं, उनके नाक के ऊपर बैठा देता है तुरंत। एक्चुअली दुर्वासी भगवान शंकर के विस्तार है। शंकर भगवान यद्यपि परम शांत पुरुष हैं लेकिन प्रलयंकर भी है, ये आवश्यक है। कभी कभी इस दुनिया में भी सारे जीर्णा कचड़ा जब इकट्ठा हो जाता है उसको और कोई काम के नहीं है, कुछ क्या करें, वो जीवन जीने में इतने नहीं, तो इसको मिटा करके जला करके भस्म करके स्वच्छ करना आवश्यकता होता है। सृष्टिकर्ता के लिए क्लीन स्लेट एक क्या बोलते हैं, साफ सुथरा जागा सृष्टि करने के लिए ये भगवान शंकर ही देते हैं, वो तो प्रलय करके साफ साफ कर देते, फिर उनको जागा मिलता है नव सृजन करने के लिए। इसी प्रकार शिव अंश दुर्वासा भी इस महाप्रतापी प्रमत्त गर्विले लोगों को अपने क्रोध और साप के द्वारा पवित्र करते हैं, उनका साप किसी का बुराई नहीं करता, भला ही होता है लोगों का, उनसे किसी का बुरा ना हुआ। तो दुर्वासा जी क्रोध में आकर के बोले, गधा बन जाते, गधे की तरह रेंगता रहता है। और उनका गर्लफ्रेंड खड़ी थी, बोले तू स्वर्ग के देवी अप्सरा होकर के इसी असुर के साथ है प्रणय कर रहा है, सटी खड़ी है उनके साथ, तू भी असुर जोनी में जाओगी, तू भी असुर जोनी में जाएगी। और दुर्वासा जी के क्रोध मूर्ति साफ सुन करके दोनों युवक युवती आकर के चरण में गिरे, गिड़गिड़ाए, बाबा जी माफ कर दो प्लीज, एक्सक्यूज अस प्लीज। दुर्वासी जितनी जल्दी, शंकर अंश है ना, जितनी जल्दी गुस्सा भी होते नीचे जल्दी शांत भी होते हैं आशुतोष, अब मीटर डाउन होगा, ठंडे पड़ गए, बोले यार यार मैं तो बोल दिया, क्या करूं अब, ना होगा कुछ ना, कुछ तो बताओ, कुछ तो उपाय बताओ, बचे कैसे। तो दुर्वासा बोले, अच्छा उपाय बताता हूँ, फिर देखते हैं आपका कैसे कल्याण होगा। हाथ जोड़ कर खड़े थे दोनों, कांप रहे थे। तो दुर्वासा ने देखे तिलोत्तमा की ओर, बोले तुम स्वर्ग के देवी अप्सरा होकर के ऐसे उनके साथ खड़ा, उनके साथ सटी कर खड़ी हुई है, तू उन्हीं के भाई बाणासुर के बेटी बनोगी। प्रभु मेरा उद्धार किता हुआ, असुरी तो असुरी नहीं तो बना दिए मुझे असुर पुत्री। बोले भगवान वासुदेव के पुत्र के साथ परिणय होगा, आप उसे वरण करोगी तभी आपका उद्धार। कब तक ना वेट करो, जब तक आओ। ये बोले मेरा, हाँ तुझे तो बोल दिया तो गधा तो बनेगा ही, गधा असुर बनेगा, बोले गधा नहीं बनेगा, गधे का रूप असुर ही बनेगा तो। और मेरा उद्धार, तेरा उद्धार तो साक्षात भगवान शंकर कृष्ण के हाथों से होगा, तो फिर उनके धाम को जाएगा। ओहो हो उनके धाम, तब तो जय हो, कितना बड़े वेट करेंगे हमने, चलेगा। तो इस प्रकार से दोनों इस प्रकार निम्न गति को प्राप्त किए, साप प्राप्त करके आ करके, कि पहले असुर कुल में थे तो कंस के साथ परिचित हो गया, फ्रेंड बन गए, तो कंस उसको बुला के ला करके अब मथुरा प्रदेश में उनको फ्लैट देने वाला, भी देखो मैं यहीं नहीं रह सकता सिटी में, मेरे सहारता को पता ही है। तो कंस ने उनको पूरा एरिया दे दिया था, बोले ये पूरा 16 मील एरिया आपका है, लेकिन देखना कुछ ज़्यादा मनुष्य नहीं खाना। लेकिन वो थे तो गधा के रूप में, लेकिन नाम था धनुक, लेकिन घास फास नहीं खाते, गधे तो घास फास खाते ना, कभी नहीं खाते, तृणभोजी नहीं थे, खूब पशु मनुष्य खूब पकड़ पकड़ खाते, असुर थे वो तो, राक्षस थे। पूरे ताल वन में आसपास जहां जाओ अस्थि कंकाल सार पड़ा हुआ है, कोई पशु मनुष्य पक्षी भी नहीं जाता डर के मारे, बाप रे खा जाएगा। और वो सपरिवार था, पूरे फैमिली मेंबर को सब ला करके बुला रखा था इधर। और वहाँ जब कोई उनको भोजन नहीं मिलता था, दूर दूर तक जाता था, कोई गांव गांव खा जाता था जाकर के, ऐसे वहाँ से करता था। तो ब्रज में चारों तरफ लोग भयभीत थे, अरे ईश्वर मत जाओ गोवर्धन के तरफ, पश्चिम की ओर देखो ही मत, गधा कब ना आ जाए, उनके परिवार सब सब खा जाता है गधा। मनुष्य खाता ना, हाँ गधा तो है लेकिन घास नहीं खाता है। हमारे यहाँ के तो गधे खूब ढोल होते हैं और घास खाते हैं बेचारे, और गधे से लाद भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, लेकिन ये गधे ऐसे नहीं थे। और इतने प्रबल पराक्रमी धनुक था, आधि देवता तो असुर था, देखने में गधे जैसे रूप था लेकिन आकार तो विशाल पर्वत के समान था। तो सचमुच ये जो देहाभिमान है, देहाध्यास है, इस शरीर को, शरीर के नाम और शरीर के संबंधी और शारीरिक सुख को सब कुछ मान लेना, और इसी के लिए संपूर्ण जीवन का समस्त परिश्रम समर्पित कर देना, यही गधेपन है। इसी को गर्धवत्व कहते हैं। इसी के चक्कर में आकर के संपूर्ण मनुष्य जन्म ही बेकार हो जाता है, समस्त मनुष्य जन्म ही बेकार, यही गधेपन। खूब श्रम करते हैं, ना जाने किसके लिए करते हैं, यही इसी के लिए। तो ये प्रबल देहाध्यास, महामोह, भयंकर अविद्या, कैसे उसे परित्राण होगा, कैसे बचेंगे उससे? ना बचे तो आगे बढ़ना तो मुश्किल है, कैसे बचे? सब कुछ इसी को मान बैठे हैं। जो भी जीवन से मृत्यु पर्यंत जो भी श्रम चेष्टा सब कुछ प्रयास कर रहे हैं, केवल इसी के चक्कर में करते हैं, बस और कुछ नहीं जानते, इसी करते करते मर भी जाते। ऐसे गधेपन से बचने का क्या उपाय है? इस महामोह अविद्या से बचने का एकमात्र उपाय है, जब भगवत भक्त श्री हरिजन के कृपा हो, भगवत भक्तों की कृपा हो, तब कोई उपाय निकले। क्या उपाय निकले? भगवत भक्तों की कृपा होगा तो श्री गुरु चरण में शरणागत होंगे, आचार्य चरण में शरणापन्न होंगे, इन आचार्यों की कृपा से ही उसका कुछ हाल निकलेगा। गुरु कृपा के बिना देहाध्यास अभी तक का मिटाना मिटेगा? कहीं इतिहास में नहीं है कि किसका देहाध्यास मिट गया गुरु कृपा के बिना, ना। और भगवान बलराम साक्षात निखिल जीवों की आचार्य हैं, आदि गुरु हैं, उनके कृपा से ही तो संपूर्ण जीव जगत का विद्यानाश होगा। तो कृष्ण लीला में अग्रज बनकर आए हैं अविद्यानाश करता संकर्षण। अब दोनों भाई गोचारण लीला में जाए हैं, गए हैं, और चलते चलते चले गए, जा करके उसी तरफ गाय के पीछे पीछे खेलते खेलते चले गए। भगवान बलराम को दिखा कर बोलते हैं कि हे भाई देखो, इस वृंदावन के इस वृक्षों ने कितने सुंदर सुंदर पुष्प फल केवल आपके लिए देने के लिए, आपके चरण में उपहार करने के लिए कैसे लगे हुए हैं। ये कोई पुष्प थोड़ी है, ये तो आपके पुराने भक्त हैं सब, तभी तो आपके चरण दर्शन के लिए, आपके संग प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो फलभार से भेंट देना चाहते हैं, फल पुष्प देना चाहते हैं। आप देखिए ये भ्रमरावली, इस मधुमक्खियों के गुंजार, और इसे पक्षियों के किस प्रकार राव है, सभी आपके संग लेना चाहते हैं। ये तो सब सिद्ध महात्मा गण है, आपके मुनिजन है, आपके भक्तगण है, आपको प्रशंसा करके संग लेने के लिए वृंदावन में सवाए हैं। इस प्रकार बड़े भाई को प्रशंसा करते हुए वृंदावन के वृक्ष राजी पशु पक्षी आली कुलों को प्रशंसा करते हुए स्वयं भगवान कृष्ण राम के प्रशंसा वर्णन में चले हैं, और सारे उनके पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गाय चल रहे हैं। और ये पावस के महीना तो थोड़ा आतप ज़्यादा होता, गर्मी ज़्यादा लगता ना, हाँ हवा नहीं चलता, गर्मी ज़्यादा होता है, ह्यूमिड है ना, पसीना उतरता है, तो थक गए थे चलते चलते, बड़े भारी गर्मी, दोपहर का समय है, थक गए थे। नारद जी उतरे देखने के लिए ब्रज, और नारद जी को आप जानते हैं, उनको ब्रह्मण लोक में भी एक घड़ी दो घड़ी टिकना मुश्किल है, साफ मिला है कि टिक नहीं सकते, और ट्रैवलिंग ऑन ऑन चलता है उनका। लेकिन उनका हाथ में जो विष्णुदत्त वीणा है उसके द्वारा केवल भुवन मोहन उनके आराध्य देव श्री कृष्ण के जैसे कीर्तन ही झंकृत होता है। और जब उनको पता चला कि साक्षात ब्रज में उनके आराध्य ब्रजेश तने ही लीलायमान है, वही गोप कुमार बन करके विचरण करते हैं अपने अग्रजों के साथ, तो और जाए कहां, उनके चरण उनके गाड़ी तक घूम फिर के केवल यही तक आता है बस, ब्रज के ऊपर अब ज्यादा नहीं, ब्रज के गगन में अपने अंतराल में रहकर बस वही दृश्य लीला के आस्वादन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब उस दिन वो आकर ब्रज में पहुंच गए, देखे कि दोनों भाइयों सखाओं के साथ और दोपहर के समय वहां पहुंच चुके हैं, गोवर्धन से दूर पश्चिम दिशा पर जा चुके। अब गर्मी के कारण पशु अभी थक गए हैं, जाकर के जहां जहां पेड़ है पेड़ के नीचे सब सो करके अपने जुगाड़ी कर रहे हैं सारे गाय, बच्चे भी देखे गाय सब जाकर सो गए, इतना गर्मी हवा भी नहीं चलता, पसीना उतरता रहता है, सारे बालकों एक बड़े सघन वृक्ष के नीचे इकट्ठा हो गए। इकट्ठा हो करके क्या कहे, देखे कि ये रामकृष्ण भी थक गए राम कनाई, तो सारे बालक मिल करके सुंदर सुंदर नरम नरम लाल और हरित वर्ण के कोमल कोमल किसले जो नए नए पत्ते तोड़ करके इतने सुंदर पत्र पल्लव सज्जा बनाए वो पेड़ के नीचे, बड़े सुंदर बिल्कुल लाल और हरित वर्ण के नरम नरम कोमल पत्ता उसको अच्छा तरह से बिछा करके बड़े ठीक से, उसके ऊपर में सुंदर श्वेत वर्ण के सुगंधित पुष्प सब ला करके सजाए, हरित वर्ण के पाटल पत्र बिछाए कि ठंडा नीचे से लगे, कमल आदि पत्ता भी बिछा दिए, थोड़ा ठंडी भी लगे क्योंकि गर्मी है भारी, तो एसी कूलर तो था नहीं, तो कमल पत्ता और पुष्प सुगंधित पुष्प ये सब क्योंकि पसीना में ऐसे ही दुर्गंध होता है, तो सब सजा दिए। सजा करके जब रामकृष्ण देखे कि बिल्कुल बेड पत्र सज्जा पर्ण सज्जा तैयार है, तो जा करके अपने दादा को हाथ में, दादा तूने बहुत थक गया है, तू ऐसा कर सो जा, ए विशाल बैठ जा, तकिया नहीं है तेरे गोद में, दादा सर रखेगा, सो जा। संकर्षण कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण मैं तो थका नहीं, मैं कहां क्लांत हुआ, मुझे कोई थकावट नहीं है। लेकिन संकर्षण को पता था आज बोलने से कुछ काम नहीं करेगा, तुझे मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि तू थका है करके, किसी नहीं स्वीकार करेगा, वो चाहता तो थकना चाहिए, किसी नहीं थकेगा, अरे भाई थकने के लिए पड़ेगा भी और क्या, नहीं नहीं तेरे कपोल में तेरे भाल में पसीना टपक रहा है, बिंदु देखा पड़े पसीना के शिखर, तेरे चरण अरुण वर्ण हो गया है, क्या बोलता, सो जा, हाथ पकड़ कर खींचने लगे, दादा सोना पड़ेगा, सो जा, तू थके दिखता है, तुझे क्या दिखता है, मैं दिख रहा हूं ना तू थका है, अच्छा बताओ, जो थके उनको नहीं पता चलेगा, वो बोलता मुझे दिखता है तू थका है, उनको पता नहीं चलता, वो मुझे दिखता है तू थके, सो जा। अनुज के इस प्रकार के अनुनय विनय को कैसे कोई टाल सकता है, अग्रज को सुना ही पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, हमें थका हूं ठीक है सो जाता हूं, और विशाल को बैठा ही पड़ जा, तकिया बन, वो बैठ करके अपने गोद फैला दिया, और शंकरसन को श्याम सुंदर ने सुला ही दिए, वो सोए क्या, सुला दिए उनको, बोले यहाँ वहीं से सर रख, हम बैठ जाओ, अब रख करके आप, मैं तेरा चरण संवाहन करूंगा, एक दक्षिण चरण को अपने गोद में ले लिए। अब ले करके संवाहन शुरू करते ही वरुण थप आ गया, बोले कनु तुम भी थक गए, तुम भी दादा के पास सो जाओ, लेट जाओ दादा के पास, तुम भी थके हो, वो उनको देखते क्या समझ रहा है तुम्हें, तुम थके हो लगता, अरे मैं तो अभी कितने दौड़ सकता हूं, मैं कहां थका हूं। तेजस्वी ने आकर बोला देखो ये सब नहीं चलेगा, दौड़ तो दादा भी खूब सकता है, तो उनको सुला दिया, तुझे सुना ही पड़ेगा, सो जा चुपचाप, तेरे कपल में भी पसीना बंदी दिखाई पड़ रहा है, चुप सो जा। अब क्या करे, उनको आदेश देना पड़ा, सोना ही पड़ा उसको। दादा के बाजू में अब अग्र अनुज भी सो गए, अब श्रीधाम आ गए, बोले श्रीधाम बैठ, उनके गोद में पर सर रखेगा, और दो तकिया बन गए दो बालक और दोनों बालक सो गए। आप तेजस्वी वरुण थप विशाल और अर्जुन वो चारों पास में कमल फूल के साथ बड़े बड़े कमल का पता दिखा ना पत्ता पत्ता वो जाकर पानी से तोड़कर ले आए। एक गिल्ला गमछा गिल्ला हो गया लेकिन गिल्ला लेकर आए बोले हम हवा करेंगे पंखा करेंगे। सुझा दो साइड में चार इनके दो साइड में दो उनके दो साइड में दो हवा करने लगे कमल का पत्ता लग रहा कूलर ऐसी तो था नहीं पंखा था नहीं ऐसे हवा करने लगे। और ऋषभ अर्जुन वरुण थवादी चार लड़के आ गए। एक बलराम जी के दो पैर को अपने गोद में ले लिए और कृष्ण के दो पैर गोद में ले लिए। पद संवाहन आपने छोटी छोटी नरम नरम हाथों से आप अपने पद्म अरुण श्री चरण को संवाहन करने लगे। पद संवाहन लगने लगा आप ऐसे सुलाने लगे पद्म पत्र में हवा करने लगे। अब सारे दस पांच बालक तो एंगेज हो गए उसमें। मधुमंगल दौड़कर आ गए हे तू इतनी बदमाश है तेरा हाथ खाली रहेगा तो तू कुछ उत्पात मचेगा ही। मधुमंगल देखे कृष्ण ने सोए सोए हाथ फैला करके एक फूल ले करके अपने अग्रज के बाल में फंसा रहे तेरा हाथ खाली रहेगा तो बदमाशी करेगा चल हाथ को ले लिया हाथ बैठ के बीच में जाकर बैठ करके हाथ दबाने लगे चल। तो मधुमंगल मणिभद्र एक भगवान के राइट हैंड और बलराम के लेफ्ट हैंड बैठकर हाथ दबाने लगे बोला सो जाओ सोएंगे कैसे आप सारे इस प्रकार उनको आराम दिलाने का प्रक्रिया करे। जितने हम भ्रमर थे मधुमक्खी थे उस जंगल में सारे आ गए आकर म्यूजिक बजाने लगे भ्रमर गान भ्रमरावली आपने कुंजन शुरू किए। वो जो शुरू किए कुछ बच्चे बोले हम क्या कमी है ना उनके साथ सुर मिला करके बच्चे भी नीचे भ्रमर की तरह मधुगान करने लगे। सारे पक्षी समाज टूट पड़ा आकर के बड़े बिस्तर वटवृक्ष था बड़े घंच था उसमें सारे पक्षियां आकर पक्षी समुदाय बैठ गए और समुदाय बैठ के लिए उनको भी सुलाना है हम भी वाद्य चलाएंगे। तो पक्षी समुदाय में उनके जो बेस्ट सिंगर चुन करके दोनों को बोले आप गाओ पपिया और कोयल उन दोनों को सुसुर गान शुरू कर दिए। उन गान को सुनकर कुछ बच्चे बोले हम क्या कमी है ना हम भी उनके साथ तान छोड़े गाने में। तो ऊपर से नीचे से साइड से तुरंत म्यूजिक और ऐसे ऐसे सुंदर हवा और पद सम्मान हस्त सम्मान और उनको सुला दिया गया पत्र सज्जा में कोमल सज्जा पर सुलाए सो रहे। इस प्रकार के गोचारण के अंदर इस प्रकार के जो थकावट मिटाने के लिए रामकृष्ण के प्रति समस्त गो सखाओं के गोप सखाओं के जिस प्रकार के दृश्य नारद जी बड़े दूर से देखते बोलते हाय हाय हम कहा को देवर्षि बने ये तो हमारे भाग्य में जुटाई नहीं। मैं कमल ही पपिया के साथ बिना झंकार सर के ताल लगा सकता हूँ लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता हूँ दूर से देखता हूँ बस क्या करो। इतने धूप के इस प्रकार जो प्रकार उनका सेवा हो रहा है श्री चरण को कमल कमल श्री चरण को लेकर के छोटे छोटे हाथ ने छोटे छोटे ग्वाल बाल जिस प्रकार सेवा कर रहे हैं जिस प्रकार डांट करके सुला रहे हैं उनके पद सम्मान हस्त सम्मान कर रहे हैं उनको आलट चावर कर रहे हैं कमल के पत्ता ला करके हमारा सौभाग्य में कहाँ ऐसा होगा। हाय हाय धन्य है सौभाग्यशाली ये गोप कुमार। इस प्रकार के उन देख करके अपने को कोस रहे हैं। इतने में समय बीता दोपहर होने लगा तो मणिभद्र ने देखा सिद्धाम ने देखा कि दोनों भाई चरण सिकुड़ रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं चरण सिकुड़ रहे हैं। लगा कि अभी उठने वाले हैं और नींद पूरा हो गया जो हो गया अभी उनका उठने वाले हैं। जैसे बलराम का आंख खोला कि नहीं सीधा बोले दादा ए दादा बोल ऐसे ऐसे कर तूने ताड़ खाया तो ये ताड़ के नाम सुन करके श्याम सुंदर सबसे पहले जगे तू लाए क्या कहा है अरे मैं तुम्हें नाम ही बता रहा था नाम कैसा है दिखाओ तो मुझे मुझे पहले खाना है दादा को मैं पहले टेस्ट करूंगा ना ताड़ तो लाए नहीं तब बताने लगा अरे दूर से जो जंगल दिख रहा ना यही तालवन है तो वरुण अरे यही तालवन है राम 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 हमको तो आना नहीं था बाबा ने मना किया था यहाँ तो भयंकर धनुकासुर रहता है सब मनुष्य को खा जाता है राक्षस है मना क्या था जाना नहीं कि यहाँ आज गाय कैसे लेकर आ गए। तो कृष्ण उठ के क्यों क्या होगा क्यों नहीं आएंगे क्यों मना करते नारे सब खा जाएगा सब खा जाए दादा क्या करेगा दादा है तो किसे खा जाएगा। तो सीधा बोला देखो दादा इतने ताल भरा हुआ है ताल वन में पास में तो कोई नहीं जाता क्योंकि गर्धवासुर रहता है उसमें तालवन में, तो उसी के दुरात्म के कारण, उसके डर के कारण कोई पशु पक्षी तक नहीं जाता, मनुष्य तो दूर की बात है। और इतने ताल अभी सीजन में, सावन के सीजन में ताल पक करके इतने लाल पीले काले रंग के भरे हुए गुफे से, वो ताल कुछ उच्च ताल पेड़ बहुत देखे ना, ताल पड़ना नहीं, आप लोग तो देखे भी नहीं होंगे सर, ताल देखे भी नहीं होंगे, ताल के पेड़, ताल के फल का कुछ आइडिया है? हे राम क्या बता सचमुच आजकल अब ब्रज में ताल वन में भी जाएंगे यहां भी ताल नहीं मिलेगा, वो ला करके दो ताल के पेड़ लगा गया, वो भी मेल ताल पेड़, वो फलते नहीं, फल नहीं उसमें भगवान गए तो ताल भी गए, आप लोग क्या देखेंगे। अब कृष्ण भूख में जो ताल वर्ण का वर्णन है, जो चित्र दिया गया है, वो भी क्या करें, अंग्रेजी में लिखते हैं पाम ट्री, और पाम ट्री मुझे भी नहीं पता था, मैं जब देखा नहीं था पाम ट्री, मैं भी सोचता था ताल को पाम बोलते हैं, मैं जो चित्र देखता था कृष्ण मुख में नारियल के पेड़ का चित्र है आप देखे होंगे ना, ताल पेड़ देखे आपने, अब बराम कितने लोग ताल के पेड़ देखे नहीं है, माय गॉड, मैं कहा कि तालवर्ण वर्णना कर रहा हूं यार भगवान शंकरषण का सबसे प्रथम लीला असुरवध में तालवर्ण में हुआ, और आप तालवर्ण के सुनेंगे वो ताल देखे ही नहीं हम लोग, ना ताल वृक्ष भी देखे हैं मैं एक बार मेरे साथ में एक ग्रेजुएट था यूपी का, मैं उसको लेकर गया था, एक ताल वृक्ष था चित्रकूट में, उसे देखा, मुझे पता भाई क्या पेड़ है, बहुत देख दाख करके सोच विचार कर आधा घंटे चारों तरफ घूमा, खजूर लगता है शायद, बोला क्या करेंगे बेचारा है ही नहीं ये तो ताल वृक्ष नारियल के पेड़ जैसा होता है, इसलिए कृष्ण मुख में चित्र देखेंगे नारियल का, बोले ताल वृक्ष नारियल की कैसे कर दिए, और सचमुच जो पाम ट्री होता ना वो देखने में एक्जैक्ट नारियल जैसा होता है, जो पाम पामोली अगर होता ना पाम ट्री, मैं जो गया था मलेशिया में देखा पाम ही पाम ट्री, अरे वो नारियल के पेड़ जैसा, और उसका फल ऐसे सुपारी जैसा होता है, उसमें तेल आदि निकालते, लेकिन असलियत जो पाम जिसको ताड़ वृक्ष है वो तो कुछ अलग होता है, और उसके फल जो होता है इतने बड़े बड़े होता है, सावन में पकता है, दो दो किलोमीटर तक सुगंध फैलेगा, इतने सेंट होगा फल जो पक जाएंगे, अब क्या कहें, इतने जूसी इतने स्वीट क्या बताएं, तो उसका सुगंध फैल रहा था और देखने में बिल्कुल लाल पीला भरे हुए थे, और इससे सुगंध आता, श्री राम कहीं सुना होगा खूब उनका मन में था, दादा तू अगर कुछ मदद करे तो ताल खाने के बड़े मन कर रहा है, मेरे लाल टपक रहा है, उसका सुगंध क्या रखता है यार, ये गधा इधर रहा है ना खुद खा रहा है, क्योंकि वो तो घास पात खाते नहीं, फल मूल खाते नहीं, वो तो मांसाहारी है, ना खुद भी ताल कभी खाए ना किसी खिलाने दिए, इतनी भयानक यार, तू कुछ मदद कर, तो कुछ खाए कुछ करे, और उसके कारण से इसी भयानक वन में कितने दुर्भग्रह से बता ना, इतने घास बड़े हुए, आधा आधा 20-20 फुट तक घास बड़े हैं, ये ना कोई गाय भी चर पा रहे हैं, वो क्या करे, अगर तू कुछ करो व्यवस्था तो गाय वो बैठे हैं पेट भर के खाएंगे, गाय भी घास और हम तो ताल खाएंगे आनंद लेंगे, जैसे ताल खाने के बाद तो कृष्ण बोले मुझे पहले खाना, मैं भी खाऊंगा, तो कृष्ण उठकर तो नाचने लगा, मैं खाऊंगा पहले, मैं तो खाऊंगा, मैं खा करके उसका गुठली को रखूंगा, उसको भी अंकुरित होगा, उसके अंदर से निकलेगा सफेद सफेद गिरी, उसको भी खाऊंगा, सारे प्लानिंग करने लगा, सारे प्लानिंग जैसे एक मिनट में सब योजना बनने लगा, ताल खाएंगे क्या करेंगे पता नहीं, अरे असुर है कैसे करेंगे, उनका इस प्रकार योजना को नारद जी सुन रहे थे, नारद जी को लगा शायद दुर्वासा जी के साप का समाप्ति का और आ रहा है, साफ पूर्ण होगा मुझे लगता है, तो इतने में बलराम कहे दादा उठना, तो बलराम जी उठे, क्या तो सब घर गए, तो कहते दादा ताल खाना खिलाना है, अनुजी बोलता ताल खाएगा, सिद्धामत तो बोलता है कि मेरे लार टपक रहा है, इतने सेंट आपको लगता नहीं, देखो ना दूर से कितने लाल लाल पीले पीले दिखता है, तो बलराम जी बोले अच्छा सही है चले, वरुण तो बोले खबरदार बाबा ने मना किया था असुर है वहां, अरे असुर असुर है तो चिंता क्या है, असुर के लिए कौन नहीं बहुत है, कन्हैया असुर के लिए बहुत है, चिंता क्यों कर रहा, चलो, और सब उठे, गाय लोग भी अपना विश्राम कर चुके थे, दोपहर सबको उठकर हांक दिए, गाय लेकर सब हंसी खुशी से कूदते कूदते नाचते नाचते हंसते हंसते चल पड़े, जैसे ताल वन के पास पहुंचे मध्यान्ह समय था, असुर ने खूब मांस फांस खा करके सोया होता, तो डे नाइट सोते रहते हैं, क्यों सोया था जमा करके, और सब परिवार के साथ सोया होता आपने कहीं, और उनको तो पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं। और बलराम जी चले गए और ये देखे कि इतनी भरी हुई लाल पली फल सब है और घास इतने बढ़े हुए हैं, गाय तो सब चरने लगे, और सभी का मन में लगा इतने सुगंधी बन। बलराम के लिए गाय को रोको, मैं जाता हूँ ताल गिराता हूँ, तो गाय के ऊपर ना ताल गिर जाए, उसको दूर यहीं रोके रहो, वहीं रोके रहो, ताल इतने बड़े बड़े हैं, गिरेगा तो उनको खेत विखत हो जाएंगे। तो गाय को यहाँ रोक दिए, बलराम जी अकेले चले गए जंगल का, जा करके दोनों हाथ पर ताड़ वृक्ष जो होता है, नारियल पड़े ताल पड़े बिल्कुल सेम है देखने में, केवल उनके पत्ते अलग है, नारियल के पत्ते लंबा लंबा होता है, ताल के पत्ते बिल्कुल अलग होता है ताड़ पत्र, लेकिन पेड़ देखने में बिल्कुल सेम है, फल भी नारियल जितने बड़े बड़े ताल के बड़े बड़े इतने बड़े बड़े फल होता है सेम, केवल पत्ते ही अलग है। सचमुच ताड़ पेड़ को तृणराज बता गया, घासों के राजा, और घास की तरह तो है ही है, कितने बड़े मोटे ऊंचाई पेड़ क्यों ना हो, उसके ऊपर जो है वो घास की तरह ही है, और लकड़ी तो होता नहीं उसमें अंदर में, तो इसे विशाल तृणराज, इसे बड़े दृढ़ ताल वृक्ष को बलराम साक्षात बल है, उसको पकड़ करके ऐसे हिलाने लगे, इंजोर करने लगे, धपा धप पके हुए फल सब गिरने लगा, साउंड करके गिरने लगा। बच्चे तो ताली मार कर नाच रहे हैं, हाँ हाँ मैं लूंगा, मैं उसको लूंगा। बोले रुको रुको रुको, गिराने दो, रुको रुको। और फल तो गिर रहा है धम धम साउंड करके, पेड़ हिल रहा है बिल्कुल, फल गिर रहा है इतने, भगवान बलराम हिला रहे हैं पूरा विशाल वृक्ष को, नारियल को, नारियल के पेड़ को हिला सकते हैं, हिला कर नारियल तोड़ सकते हैं, अब सेम नारियल के पेड़ जैसे है, नारियल गिरेगा नहीं, ताल के पेड़ भी बहुत लासी उसका स्ट्रांग है, पकड़ा हुआ है, लेकिन भगवान बलराम के बल है, इसलिए कहा गया राम राम महाबाहु, बलराम का विशेष परिचय है विशाल भुज, भुज बल उनका है, इतने महाबाहु उनके बाहु बल इतने बड़ा है, इसलिए तो बल है, पकड़ कर हाथ में से झिकझोर कर दिए कि पेड़ सब गिर गया, उसके पत्तल भी गिरने वाला था इतने जोर से हिला। गर्धवराज धनुकासुर सोए थे, उनका दिवा निद्रा व्याघात हुआ, दिन के समय इतने धमधमाधम ताल गिर रहा है, पेड़ हिल रहा है, जमीन कंप रहा है, उसको डिस्टर्ब फील किया, उन्होंने सोचा कोई जंगल में बड़ा गजराज घुस गया है जंगल में, नहीं तो ताल वृक्ष को तो कोई दूसरा प्राणी हिला, वो तो स्वप्न में नहीं सोचा था मनुष्य आएंगे करके, मनुष्य मेरे बालक बच्चे आ जाएंगे, ये स्वप्न में सोचने का दूर था, वो सोच रहा था कोई भयानक बड़े हाथी गजराज घुस गया, वो आकर के ताल वृक्ष को हिला रहा है, ताल गिर रहा है शायद, लेकिन गजराज अनपेक्षित ऐसे कैसे आ गया, उनको पता नहीं कि मैं हूं इधर, उनको सहन नहीं हुआ, तुरंत बद्ध कर डालेगा, सचमुच देखने में हाथी के जैसा उनका शरीर था, बल में तो 100 गुना ज्यादा था हाथी से, 100 हाथियों के बल था उसके अंदर, आप उठ करके गर्जना करने लगा, गधों के गर्जना तो आप सुने होंगे, ताड़ नहीं थे, गधे तो देखे होंगे ना दिल्ली वाले, हाँ नहीं देखे, गधे भी नहीं देखे, देखे होंगे ना गधे, नहीं तो भाई डुप्लीकेट गधे खच्चर तो देखेंगे ना, देखे ना, हाँ देखे, तो उनका जो आवाज सुने ना, नहीं गधों का गीत, वो भी कभी कभी गीत गाते हैं, रेंकते हैं चींपो चींपो ऐसे करके, ऐसे आवाज करते तो ऐसे आवाज करने लगा, करके बहुत शब्द करते हुए दौड़ा वेग से, वो सोच रहा था कि विशाल हाथी आया, ऐसे मारूंगा उसको, हाथी उड़ जाएगा, था ही इतने बलशाली भयानक, हो गर्जना करता आया, आ करके बहुत वेग से दौड़ा, ओ बलराम खड़े हो गए, बच्चे दौड़ पड़ रहे थे ताल को उठाने के लिए, लेकिन दौड़ पड़े नजर पड़ा, बड़े दुर्दश धूल उड़ा करके साउंड करके गर्धवासुर आ रहा है, उसको देख कर सब डर गए, संकित होकर खड़े रहे, कौन आ रहा है, बड़े वेग से आया हूं हाई स्पीड में, धनकासुर आया, आ करके बच्चों को बलराम को देख रहे, उनके आश्चर्य की सीमा में, अरे हु आर दे, कोई हाथी पाती नहीं, कोई विशाल जानवर नहीं, ये बच्चे मनुष्य के बच्चे कैसे ताल गिरा है, संभव ही हो नहीं सकता, इतने मजबूत पेड़ से ऊपर से गिरा दिए हिला करके, हाँ कौन, सोचने लगा देख करके, थोड़ा जरा सोचने लगा,
सोच कर देखा इतने सारे ताल गिरा दिए ये बच्चे आकर के, और ये गुस्सा तो और बढ़ गया। मैं सोच रहा था कोई बड़े गजराज होगा, किसी ने तो धमाका मारूंगा, ये बच्चे आकर के हाथी से भी बड़े काम कर डाले। अरे बड़े उदंड है ये, खड़ा है अकेला, हुई अकेला साथ हिलाया, बड़े मजबूत लड़का लगता है। तो उसको पहले मारता हूं, उसका गुस्सा बढ़ गया। तू छोटा सा बालक है, मेरे बिना परमिशन में दोपहर में मैं उठा दिया, उठा करके तू इतना मेरे लूटपाट कर रहा है, मेरे पेड़ को हिला से फल गिरा दिया। तो देख करके पहले तो आश्चर्य हुआ, थोड़ा सोचा, सोच कर गुस्सा हो, तुझे देखता हूं अभी, तू छोटे से बच्चा क्या यही सी तो एक प्रहार से तो राम राम करेगा ही। तो आया, अब गधों की आक्रमण के एक पद्धति होता है, आपको पता है ना, स्पेशल वे टू अटैक। सामने से आएंगे दौड़ करके, इमीडिएट बैक गिर लेंगे, घूमेंगे, इमीडिएट टर्न करेंगे, टर्न करके बैक आएंगे, मुंह मोड़ करके इसे बैक में पीछे दुलत्ती उठाकर मारेंगे धमाका। बैक गियर से मारते हैं, पीछे चक्का से, फ्रंट व्हील से नहीं। आप उठ करके वो सेम प्रक्रिया से आया, आ करके बलराम का सडन से घूम गया, घूम कर पीछे करके आया बैक गियर से, आकर उठा के दे दुलत्ती झाड़ा बलराम, जैसे बलराम देखे तो साइड हो गए, अरे बेकार गया चोट उसका, इतने जोर से मारा तो हवा में गया, वो बच्चा इधर हो गया, खड़ा हो गया, देखा भाई बच गया, मेरा इतने सारे एक्सपर्ट सर बेकार हो गया, तू कैसे गया, अभी देता हूं तुझे। तुरंत और क्रोध में जर्जरित हो गया, और घूम करके पीछे ब्याक सेट फेरा, आ करके दलत्ती फेर मारा। इस बार बलराम ने बोले तू बहुत उत्पटांग कर रहा है, आपने दाहिने हाथ से पकड़ दोनों पैर को पकड़ लिए, महाबाहू पकड़ ले दोनों पैर को, पकड़ करके पीछे मुड़कर देख रहा था, उठाकर घुमाए उनको, इतने जोर से मस्तक के ऊपर घुमाए कि उनका जीवा निकल गया, आंख निकल गया, शब्द निकला, रे रे केंका चेंचा कर करके मर गया, वही मर गया, घुमाते घुमाते मर गया, वही मर गया ऊपर से, और नीचे तक आना ही नहीं देश को, ऊपर से मर गया। भगवान बोले चलो डेड बॉडी को क्या होकर उठाकर फेंक दी उसको, ये उठाकर फेंक के वो ताल के पेड़ के ऊपर जाकर पड़ा, ये ऊपर से उठ करके जोर से, एक विशाल इतने भयानक शरीर था उसका, एक ताल वृक्ष के ऊपर पड़ा, वो ताल तो तोड़ा, वो तोड़कर दूसरे ताल के ऊपर वृक्ष पड़ा, वो भी तोड़ा, ऐसे कम से कम 10-20 ताल के पेड़ गिरे, धमा धम धमा धम, एक के ऊपर एक दूसरे गिर करके इतने भयानक पर्वत जैसा शरीर गिरा उसका, बाप रे प्रलय मचा दिए। और उनके जितने फैमिली मेंबर्स थे, चाचा काका ताऊ बेटा बेटी सब, पोता पोती तक हुआ थी सब, सारे असुरवंश तो है ही है, अब सारे उठे, दादा कहाँ है, हमारे राजा कहाँ है, धनुकासुर धनुकासुर देखो तो धनुकासुर, सब बड़े पूरे जंगल में प्रलय मचा रखा है, सब दौड़े एक साथ में, अरे क्रोध से भर करके आए आक्रमण करने के लिए, कौन घुस गए शत्रु, कौन घुस शत्रु, हमारे राजा कहाँ है, राजा आकर देखते, राजा का डेड बॉडी से जीव निकला करके पड़ा हुआ है, जीव काटा हुआ है, राम नाम सत्य हो चुका है। उसको देख करके शोक और क्रोध के मारे सपरिवार पूर्ण शक्ति के साथ दौड़े अटैक करने के लिए। इतने सारे गधे, सारे ग्वाल वाल बोले रे बहुत गधे आ रहे हैं, बहुत सारे गधे आ रहे हैं, सब आपने अपने लकुट उठा लिए, सब आपने अपनी लाठी उठाकर तैयार। अब कृष्ण ने बोले कोई मत आए, कोई मत आए ना, क्यों, अरे सब राक्षस है। तो माधु मंगल ने बोला राक्षस जाने दो यार, राक्षस के लिए गधे होते तो हम लोग का सहायता जरूरत होता, अगर गधे होते तो हम अपना लकुट उठाकर कुछ मदद करते, राक्षस है उनके लिए तो कौन ही सफिशियंट है और क्या। बोले क्यों, क्योंकि हम बचपन से देखे आ रहे, डेली देख रहे हैं राक्षस लोग, बड़े बड़े पावरफुल आते, इतने पर्वत जैसा शरीर होता है, लेकिन सब थर्माकुल बड़ी है नहीं कुछ, खूब गुर्रा रहे, गांव गांव हो हाँ कर रहे, नाचेंगे कूदेंगे, और कनू मार देता है कि थप्पड़ मर जाते, उनका तो है कि थर्माकुल से बने हुए शायद, उनका तो कुछ होता ही नहीं, गधे होते तो हमारा हेल्प जरूरत होता, वो गधे तो है नहीं, कनू बोलते राक्षस से जाने तो फिर हम क्यों जाएंगे, चाहे तो हम ताल खाते। और सचमुच वो तो गधे राक्षस थे, वो आए इतनी संख्या में आए तो रामकृष्ण को खेल का मौका मिल गया, अभी सो सो कर उठकर आए, बाकी तो सोए नहीं थे, बोले हम थोड़ा फुर्ती करते हैं। वो आकर गधे अपने स्टाइल के अनुसार आकर के धमाका पीछे बैक गियर से मारे और उनको पैर पकड़े, पैर पकड़ घुमा कर फटाफट इसके एक घुमाए एक घुमाए इधर एक इधर धड़ाधड़ घुमा कर उठाते पूरा आकाश में छा गए गद्दा पकड़ते हैं सकड़ो गद्दे आए सकड़ को उड़ा दे उड़ने लगे अभी ये दौड़ रहे वो देख रही उड़ रहा है उड़ रहा उड़ करके और ताल के पेड़ के ऊपर धमाधम गिर रहे हैं पूरे बगीचा नष्ट भ्रष्ट करवा दिए इसीलिए ताल को कभी होता ही नहीं सारे वंश उजाड़ दिए भगवान ने तो उठेगा अरे भगवान जिसको फेंक देंगे वो फिर के उगेगा दूसरा कोई अगर काट पीट करता तो उग भी जाते साक्षात परमेश्वर साक्षात भगवान जिसको त्याग देंगे जिसको तोड़ दाड़ के उजाड़ देंगे तो कहाँ के उगेगा भाई वो इसलिए गोड़ी मठ वाला लेकर के कई साल से ताड़ उगा रहे हैं लेकिन ये मेल ताड़ हो रहा है ताल फलने वाला ताल हो ही नहीं रहा दो तीन किए लेकिन ये बेकार हो गया क्योंकि साक्षात कृष्ण वरदान ने उजाड़ दिया ताल वंश को गधे मार मार के उगा थे कोई दूसरे कोई किए नहीं जीवन तो गधे मार फेंक फेंक करके उड़ा उड़ा करके सारे ताल वंश ध्वंस कर दिए उजाड़ दिया और देखते देखते एक घड़ी के अंदर पूरे तालवन पट गया और मिलों तक धरती और लाल पीले काले इतने बड़े बड़े ताड़ों से तो कई हजारों ट्रकलोड फल गिर गया। अब तो कुछ पूछना नहीं था गायें तो अपने चारों तरफ इतने घास बढ़ा हुआ था पेट भर के धमाका खाते हैं और बच्चे सब मिल गए इतने ताड़ है कितने उठा के ले कितने करे इतने बड़े बड़े होता है दो दो किलो के एक एक ताड़ होता है उठा करके और श्याम सुंदर ने एक बढ़िया सा ताड़ सुगंध वाला उठा लिए उठ करके ओठ में चाटते रहे दूसरा हंसना अरे तू कैसे खाएगी इसको इसे थोड़ी खाते हैं कैसे खाते हैं कैसे खाते हैं तो सीतामा ने आया एक लकड़ी तोड़ के ले आया ला करके उसको उसी के अंदर से उसका जो कवर निकाल करके उसका अंदर फंसाया फंसा करके ऐसे ऐसे घुमाया तो घुमाया तो उसके अंदर लाल लाल पीले पीले उसका अंदर बिल्कुल कुदा चटनी की तरह ऊपर निकला बोला उसको खा के देखो अरे क्या टेस्टी है उसका हाँ तो इसे खिलाते थे सब और कोई कोई सारे बाकी लोग गए सारे ग्वाल लोग जा करके राम और कृष्ण को आलिंगन करने लगे तुम बढ़िया वाह वाह बढ़िया काम किया सबका हाथ जा देखने लगे बलराम दिखाओ तो हाथ दिखाओ तो उनका पैर पकड़ा तो हाथ तो लगा नहीं उनके हाथ देखे पूछ दिए सबको कोई बात नहीं ठीक है सब ताल खाने लगे सभी ने एक एक ताल खुद खाते हैं तोड़ करके सब दादा को लेके देते दादा तू ही खा तेरे वजह से ताज हुआ काम तो सब ताल खाना और खिलाना गाय को करना इस प्रकार से धेनु के वंश को नाश करके ताल खा करके ग्वाल वालों के साथ और नारद जी उसको देख करके तो प्रीत हो रोते आहा हा आज दुर्वास जी के साप परिपूर्ण हुआ आज गर्भासुर समूल सपरिवार उसका उद्धार हो गया। अब धनुकासुर को तो बलराम ने अपने धाम में भेज दिए बाकी अपने अपने टर्न के अनुसार कोई उनके हाथ में कोई उनके हाथ में सपरिवार गए कोई इधर तो कोई उधर इस प्रकार से भगवान बलराम ने अपने लीला में सबसे प्रथम जो ओपनिंग किए गधे से किए भगवान कृष्ण से एक स्त्री से किए और राम गधे से किए है ना नहीं क्योंकि पुतना थी अविद्या रूपिणी और ये थी देहाध्यास देहाभिमान था बड़ी कंसेप्शन अप्लाई तो उसी को बलराम अपने आचार्य चरण से आचार्य कृपा से हो जाता है तो इसलिए इस प्रकार भगवान राम ये शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार हमारे अंदर ये जो गर्धवपन है गर्धवत्व है जो हम इसके मोह से आकर के इस अमूल्य मनुष्य जन्म को भी केवल इस शरीर और शरीर संबंधी के लिए श्रम करते बिता देते हैं पूरा मिटा देते हैं उसको इस प्रकार गुरुचरण की सेवा करके भक्तजन की सहायता से उनकी कृपा से उनके से आप रक्षा पा सकते हैं बच सकते हैं और उससे बचने के बाद सही सही बलराम जी के वंदना और सही सही भगवत भक्ति सही सही भक्ति के आनंद को ले सकते हैं नहीं तो वो नहीं कराने देगा। तो इस प्रकार आज बलराम जयंती के उपलक्ष्य में जो बलराम चरित के आप आस्वादन करना चाहते हैं तो आज के शुभारंभ में तो हम सोचे कि इस बलराम जी ने जो प्रथम लीला में जिस असुर को बद्ध किए इस गर्धवासुर जो हम सभी हैं उनके परिकर में तो इस बलराम जी के आज प्रथम लीला में उनको शरण में प्रार्थना करेंगे कि वो भी जैसे इस धनुकासुर गर्धवासुर को मार करके उनको उद्धार किए इस प्रकार हमारे बुद्धि में मन में हृदय में
इस प्रकार जो गर्दभत्व प्रकट है जिसके कारण हम भी इस प्रकार मोहित है, तो इस मोह इस देहाध्यास देहाभिमान को उनके कृपा से दूरभूत करें ताकि उनके लीला को हम आस्वादन कर पाए। इस प्रकार प्रार्थना करके हमारे श्री बलराम के चरण में श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। आज अगर आप भी जाएंगे जहाँ धेनुका सुर ताल वन जहाँ था, आज भी जाएंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड में गांव का नाम है धनवा गांव, है देख रहा था गया तुम देख रहा धनवा ग्राम पंचायत, बोला धेनुका सुर का नाम अभी भी है हाँ उसके नाम से अभी भी रखे हैं गांव के नाम धनुका करके धेनु गांव रखे हैं। वो संकर्षण कुंड है, संकर्षण जहाँ संकर्षण कुंड है ओके मंदिर है वहाँ, वही धेनुकारी बलराम। यद्यपि कृष्ण बलराम की लीला में बलराम जी अग्रज थे लेकिन फिर भी आपने आप को कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट प्रथम प्रधान सेवक मानते थे, हमेशा सेवक अभिमान। यही जैसे श्री नित्यानंद राम हमेशा महाप्रभु के महाप्रभु से 20 साल बड़े थे उम्र, बड़े होकर भी 20 साल 12 साल 14 साल बड़े थे, बड़े होकर भी हमेशा अपने को दासाभिमान करते थे और सबका सामने बोलते थे भी चैतन्य निर दास मई दासर अनुदास, केवल उनका दास नहीं उनके दासों के दास भी हूँ, ऐसे उनके अपने अभिमान कर रहे थे। तो इस प्रकार ठीक साक्षात श्री बलराम संकर्षण अभिन्न कृष्ण, शास्त्र में कहा गया कृष्ण और बलराम में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम, नो डिफरेंस ओनली कलर इज डिफरेंस, ये सांवला ये गोरे दैट्स इट, और कुछ नहीं, तत्व एक ही है, व्यक्ति एक ही है, केवल कलर कंप्लेक्स अलग है, रंग मात्र भिन्न है, बाकी दोनों एक ही है। तो इसलिए चाहे बलराम की कृपा में चरण पकड़ो तो ये कृष्ण, कृष्ण के चरण पकड़ो बलराम, लेकिन इस दोनों में भी थोड़ा सा अंतर है, अगर कृष्ण के चरण पकड़ते हैं इतना आसान नहीं है, अगर बलराम के चरण पकड़ते हैं तो कृष्ण चरण पकड़ गए। ये महाकारुणिक उनका केवल काम है, बलराम जी का एक ही काम है सारे संसार की हमारा जैसे पतित गधों को उबार करके सुधार करके कृष्ण के चरण में ले जाना, यही उनके आचरण है। इसलिए आचार्य निखिल जीवाचार्य है, आदि गुरु आदि आचार्य है। तो जब तक हम उनके शरण में ना जाएं, उनके महिमा ना जानें, उनके महत्व ना गाएं, तो हमारा उद्धार हो कैसे सकता। तो आज ऐसे महत्वपूर्ण दिन राधा गोविंद के राधा राधिका रमण के झूलना उत्सव में, बोला ना ये पावस की बड़ी गर्मी होता है, सब गोप सखाओं ने मिल करके राम कनाई को पंखा करने लगे, क्योंकि जो गर्मी लगता ना, जब पहले जमाने इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तो दो ही तो उपाय है गर्मी से बचने के लिए, कोई पंखा ला करके करो हवा, और पंखा नहीं है तो आपने हिलो, दूसरे वस्तु को हिलाओ नहीं तो खुद हिलो, तो झूलन जो आपने हिलने का प्रक्रिया और क्या। तो इसलिए अब यदि सखागण रामकृष्ण को पंखा कर सुला करके, सखीगण ने अब राधा श्याम सुंदर को झूला में बैठ करके झुलाने लगे। अब दिन में बलराम जी को हवा कीजिए कमल पत्ता ला करके, और शाम को राधा राधा के रमण को सब गोपियां सखियां मिल करके उनको झुलाएं, दोनों सुबह शाम आप उनको वायु सेवा करते रहे, इस प्रकार से गर्मी से उनको सांत्वना देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए एक प्रकार क्रिया अब 5 दिन लगभग करेंगे। तो लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हम आपका साथ नहीं रह पाएंगे, तो अभी हम आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। श्री कृष्ण बलराम जी की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। मैं आशा करता हूँ किसका कोई प्रश्न होगा नहीं शायद है, अच्छा बोलिए।
हरे कृष्ण महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप इसने इस पावन एकादशी के दिन आपने बलराम जी की कथा का श्रवण पान कराया, उसके लिए मेरा पहला प्रश्न है कि जो आपने साहसिक के साथ में तिरुत्तमा अप्सरा जो आई थी उसको दुर्वासा मुनि श्राप दिए, थोड़ा आप उसको बताएंगे, मैं समझ नहीं पाया, उसको सांप गधी बनने का मिला या कुछ और?
नहीं, गधा बनने का सांप मिला साहसिक को, और उनको असुर जोनी में वो असुर की बेटी बनकर पैदा।
अच्छा, बाणासुर की बेटी।
हाँ, बाणासुर की बेटी है ना, उषा बना,
उषा। अच्छा,
वही उषा बना।
अच्छा, और दूसरा प्रश्न है महाराज, जो बलराम जी ने जब कुछ विशेष लीलाएं हुई भगवान कृष्ण ने असुरों का वध किए, जैसे कि अघासुर या कालिया, तो उस समय बलराम जी अनुपस्थित थे, इसके पीछे कुछ विशेष कारण
है? रहस्य है, क्योंकि बलराम आदि नाग है, महाशेष अनंत शेष स्वयं है, से सांपों के गुरु हैं। अगर वो सांप के साथ का लीला होगा और सरदार रहेंगे उनके सामने, कौन लीला करेगा? बोलेंगे सर आप रहेंगे हम, तो इसीलिए बलराम झट जाते ताकि वो खेल हो। उनके सामने कोई सांप आपने सर उठाकर कुछ कर नहीं सकता, खेल खेल नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने जान बुझ कर एब्सेंट रहते थे ताकि अखास रो हो काले हो अपने कुछ ड्रामा करें इसलिए।
और एक अंतिम प्रश्न है, बलराम जी ने कुछ विशेष असुरों का ही वध किए हैं, जिसमें से आज आपने धेनुकासुर के बारे में विस्तार से वर्णन किया, तो इन जो असुरों का उन्होंने वध किए हैं, इसके पीछे कुछ रहस्य क्या है, और इसके पीछे हमारे
लिए है क्या है? जिन आचार्यों ने कहते हैं बलराम जी का जो ड्यूटी था वो अपने किए, जैसे गधवासुर था, धेनुकासुर था जिसमें बताया देहाभिमान, उसके बाद प्रलम्बासुर था, दो ऐष्णा है, लोकेष्णा, ऐष्णा समझते ना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का जो इच्छा है, लोकेष्णा, ये ऐष्णा सब जो ऐष्णा होता इच्छा होता है, इस प्रकार के प्रलम्ब, अति भयानक लंबा, बहुत लंबा प्लान है, ये मुझे करना है, ये करना है, डू दैट डू दैट, प्लानिंग अभी पची नहीं, 25 साल के आगे तक प्लानिंग करते हैं, बचेंगे नहीं, 5 साल मरी जाएंगे खुद, लेकिन प्लानिंग 25 साल का करते हैं, ये सब ऐष्णा है। इस प्रकार प्लम्ब, इस प्रलम्ब को भगवान आचार्य चरण से इस प्रकार से सद्बुद्धि देते हैं, उनके उद्धार की, तो इस प्रकार बलराम जी जिस संहार करते हैं तो इसके पीछे रहस्य होता है। इस जीव को इस अविद्या मोह देहाध्यास ऐष्णा से मुक्त करके भगवान पास ले जाना बलराम जी का ही प्रोजेक्ट है, इसलिए उस प्रकार। हरे कृष्ण। यस,
उनको उन्होंने फल खाए नहीं थे।
हाँ, वो आकर के मधुमंगल साइड में खड़ा हुआ, मणिभद्र फल ले रहे, तुम क्यों नहीं खा रहे है? हम द्विजाति श्रेष्ठ ब्राह्मण है, फल अपवित्र है, चल हम नहीं खाते, आप सबको अभी गौमूत्र पीकर पवित्र होना पड़ेगा, ताला हम नहीं खाते अपवित्र फल है, सारे गधे रहते हैं, हम तो पिकाएंगे उसको, नहीं खाएंगे, है ना? नहीं, और विशेष करके ताल इसी यूपी एमपी राजस्थान हिमाचल के होता ही नहीं, इसलिए आप लोग क्या अवित्र तो बोलेंगे ठीक है, जैसे अंगूर को कुदा मारेंगे मारेंगे नहीं मिला बोले खट्टाई है, तो ऐसे ही कहेंगे और क्या कहेंगे, लेकिन जहाँ पर ताल प्राप्त होता है वहाँ ताल का महिमा हो जाए, है ना?
तो महाराज खाए थे कि नहीं खाए थे मतलब?
अरे भाई खाए तो थे, और दौड़ कर गए किस लिए? आपको मिला ने नहीं खाया बताओ? वो तो खाए थे, इतने बड़े परिश्रम काहे को क्यों जाकर, नहीं खाए तो नहीं जाना था।